नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 ने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करने के कई क्षण दिए। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया।
आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए।
श्री मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जज्बे की प्रशंसा की।
यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजे। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
श्री मोदी ने वर्ष 2026 को विकसित भारत की दिशा में देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री मोदी ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा चरण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा नेता संवाद में वे स्वयं भी भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दो दिन के दौरे पर पुदुचेरी, केरल और तमिलनाडु जाएंगे। वे पुदुचेरी में महाकवि भरथियार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक आवास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। वे आज केरल में आयोजित होने वाले त्रिवेंद्र महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम के दो दिन के दौरे के लिए कल गुवाहाटी पहुंचने का कार्यक्रम घने कोहरे के कारण उड़ान रद्द होने की वजह से एक दिन के लिए टाल दिया गया है। श्री शाह आज सुबह एक दिन के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचेंगे। आज वह गुवाहाटी में नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र में अवैध विदेशियों के खिलाफ असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद श्री शाह नागांव जिले के बोरदुआ में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान बतादरवा थान के लिए रवाना होंगे, जहां वह आध्यात्मिक स्थल के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बूथ स्तरीय अधिकारियों यानी बीएलओ के साथ चर्चा करेंगे। ओडिशा के खुर्दा और कटक जिलों के लगभग 800 बीएलओ इस बैठक में शामिल होंगे। श्री कुमार राज्य के वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे। इनमें चुनाव तैयारियों की समीक्षा और मतदाता सेवा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी। उच्चतम न्यायालय में आज अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर उठे विवाद पर सुनवाई होगी। न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस पीठ की इस मामले की सुनवाई करेगी। इसमें न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एजी मसीह शामिल हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि स्वदेशीकरण के साथ लगातार प्रयासों से भारतीय रेलवे को विश्व स्तर का नेटवर्क बनाने में मदद मिल रही है। मंत्रालय ने कहा कि अमृत भारत ट्रेनों के जरिए गैर वातानुकूलित यात्रियों को आरामदायक यात्रा देने के बाद भारतीय रेलवे जल्द ही वातानुकूलित श्रेणी के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम में चौथे महिला T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 30 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने श्रीलंका को 222 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 191 रन बनाए। श्रृंखला का पांचवीं और आखिरी मुकाबला मंगलवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में 31 तारीख तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत में आज तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।